श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 10। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। भगवान में चिंतन करने के लिए, क्योंकि मन को नियंत्रित करना आवश्यक होता है, इसलिए भगवान यहाँ पे योग मिश्रित भक्ति को समझा रहे हैं। भगवान ने सातवें अध्याय में कर्म मिश्रित भक्ति, जो तीन प्रकार के लोग हैं, जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्थ, भगवान के पास आते हैं, उसका वर्णन किया था। और ज्ञान मिश्रित भक्ति, जो जन मृत्यु की चक्र से छूटने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, उसका वर्णन किया था। और इन श्लोकों में वो योग मिश्रित भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भवों के बीच आज्ञा चक्र में ले आएं। यहाँ पर षटचक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। तो आप देख सकते हैं, हम समझा रहे थे ना, 10, 11, 12, 13 में योग मिश्रित भक्ति के बारे में बताया गया है। इस श्लोक में योग बलेना का शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षटचक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी न किसी योग का, विशिष्टतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य के को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। अद्भुत है कि इसी चीज को श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बता रहे हैं कि एक स्थिर मन से भगवान का स्मरण करने के लिए व्यक्ति को योग का अभ्यास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर योग का अभ्यास नहीं करेगा तो मन का उसके विषयों से, विषय भोग के चिंतन से उसको अलग करना ये मुश्किल होता है। मुश्किल क्या, प्राय असंभव ही हो जाता है। जब व्यक्ति बार बार भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे करके मन भौतिक इच्छाओं से, भौतिक कल्पनाओं से निवृत्त रहता है। और ऐसी स्थिति में जिसने इस प्रकार का अभ्यास जीवन भर किया है, ऐसा व्यक्ति भगवान का स्मरण मृत्यु के समय कर पाएगा, जिस समय मन सबसे अधिक डिस्टर्ब होता है। तो इन श्लोकों में भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो लोगों का रुचि या विश्वास षट कर्म योग यानी कि अष्टांग योग में है, वो इस प्रकार से, क्षमा कीजिएगा, षटचक्र योग, हाँ, तो इस प्रकार से वो आज्ञा चक्र में अपने चित्त को फिक्स करें, लेकिन इसका भी वो उन्हें अभ्यास करना होगा। और भगवान का स्मरण करके शरीर त्यागेंगे तो भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। वो धाम कैसा है इसके बारे में बता रहे हैं भगवान। यदक्षरम वेद विदो वदंती विशन्ति यदयतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहणे प्रवक्षये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षटचक्र योग का विधि का अनुमोदन कर चुके हैं। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन प्रश्न कर सकते हैं, तो वो विधि है क्या, और धाम है क्या, तो उसके बारे में चर्चा हो रही है। यह मानकर कि हो सकता है कि अर्जुन को षटचक्र योग अभ्यास ना आता हो, कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, यानी उसके अलावा कुछ नहीं है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन अविवाहित जीवन का बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ में ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा करी है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो यहाँ जो भगवान इस रीति को बता रहे हैं, अगर आप देखें तो इस कलयुग में इस समय कौन व्यक्ति ठीक ठीक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? सारा वातावरण पूरी तरह से दूषित है। तो अगर इस विधि को हम समझ भी लें कि षटचक्र योग है क्या, फिर भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको क्रियान्वित करने के लिए जो योग्यता है ब्रह्मचर्य पालन करने की, वो कोई कर ही नहीं पाता है इस कलयुग में, प्रायः कोई नहीं कर पाएगा। फिर भी इसको हम चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल जो है वो बता रहे हैं। और प्रैक्टिकल है भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण, और इसके द्वारा है व्यक्ति बड़ी आसानी से प्रगति कर सकता है। आसानी से ही क्या, प्रभुपाद बताते हैं इसको विगरसली, बड़ी तीव्रता से प्रगति करता है भगवान के नाम के उच्चारण के द्वारा। सर्वद्वाराणि संयम या मनोहृदि निरुद्ध चा मूर्धन्य ध्यायात्मनः प्राणम आस्तितो योग धारणाम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति की को योग की स्थिति कहा जाता है। अर्थात इंद्रियां लगातार जो भोगों में जाती रहती हैं, उससे भी जब व्यक्ति विरक्त हो जाता है तो उसको योग धारणा योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में तथा प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इंद्रियों का जो बाहरी मूवमेंट है विषयों की तरफ जाने का, उससे खींच करके प्रत्याहार करते हुए अपने मन को आंतरिक करते हुए व्यक्ति अपने आप को योग में स्थापित करता है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय मुख के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। और इस चीज़ को हम लोग भक्ति में भी करते हैं, जब हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं और बहुत सारे विचार आते रहते हैं, तो उन विचारों से हटा करके अपने मन को नाम के ध्वनि पे लगाने का प्रयास करते हैं। इसमें ज्ञानेंद्रियों नेत्र कान नाक जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतः वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित भगवान परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सिर के ऊपर तक चढ़ा जाता है। इसका विस्तृत वर्णन छठे अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। तो इसमें कुछ समझाना नहीं है श्लोक में, यह क्लियर है कि इंद्रिय विषयों को इंद्रियों से दूर करना प्रत्याहार कहलाता है, और ये योग के माध्यम से करते हैं। लेकिन ये मुश्किल है इस समय, क्योंकि सब तरफ केवल भोग के विषय ही व्याप्त हैं। तो इसलिए भगवान में अपने मन को सीधे लगाने का प्रयास करना चाहिए, और उसका सबसे सरल तरीका है ये हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण और भगवान के बारे में सीधे सीधे भागवत और भगवद गीता से श्रवण करना। ओम इत्याक्षरम ब्रह्मन् व्याहारन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है, यानी कि भगवान का सालों को प्राप्त करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि आजकल जो लोग भी ओम ओम करते हैं वो लोग भगवान का स्मरण ना करके कुछ निर्विशेष का स्मरण करने का प्रयास करते हैं। अगर वो करते हों तो हो सकता है वो ओम करते हुए अपने घर का ही स्मरण करते हों, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति कहाँ जाएगा उसमें बड़ा संदेह है। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है लेकिन हरे कृष्ण में ये ओम सन्निहित होता है। जो व्यक्ति हरे कृष्ण कर रहा है उसको अलग से ओम उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है, अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। अभ्यास के गुणानुसार मतलब हरे कृष्ण करते समय उसे भगवान के किस रूप का स्मरण उसने किया है जीवन भर और मृत्यु के समय किसका स्मरण करता है उसके अनुसार उसको वो लोक प्राप्त होता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं क्योंकि जीवन भर कृष्ण का स्मरण इस प्रकार से किए हैं। सगुणवादियों के आध्यात्मिक आकाश में अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। तो निर्विशेषवादी अगर ब्रह्म का स्मरण करते हैं ओम करते हुए तो भगवान की प्राप्ति इस तरह से करते हैं कि भगवान की प्रभा में जाकर वो विलीन हो जाते हैं, और जो भगवान का स्मरण करते हैं व्यक्ति के रूप में भगवान के रूप में जैसे कि पहले बताया गया था वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। इसके विपरीत एक दूसरा मार्ग है, विपरीत नहीं कहना चाहिए अलग मार्ग है, और वह है अनन्य भक्ति का, तो उसके बारे में भगवान 14वें श्लोक में बताएंगे। हरे कृष्णा।